జగన్నాథ్ బలదేవ్ సుభద్రా కి, శ్రీ శ్రీ నితాయ్ గౌర్ సుందర్ కి, శ్రీల ప్రభుపాద్ కి, నితాయ్ గౌర్ ప్రేమనంది. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ, ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ, ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం అజ్ఞాన తిమిరాంధశ జ్ఞానాంజన శలాకయ చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం ఏన భూతలే స్వయం రూపాకదామయం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుత పదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపాం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్యదేవం. శ్రీరాధాకృష్ణపాదాన్ సహగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికాకాంత రాధాకాంత నమస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే వృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరి ప్రియ. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యేవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసది గౌరభక్తవృందం. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే కృష్ణ. ఆప్ సబ్క స్వాగత్ హై ఇస్ కార్యక్రమ మే. తో ఇస్ గ్రేస్ దామోదర్ ప్రియ ప్రభు నే కహా తా ముజే కి ఆప్ కుచ్ బరసానా ఔర్ శ్రీమతి రాధికా ఆది జో విషయ హై ఉన్ పర్ విస్తార్ సే చర్చా కరే. తో అభి అభి బర్సానా యాత్ర హుయీ థీ. ఆప్ మే సే కిత్నే లోగ్ ఆయే థే బర్సానా యాత్ర మే? చార్ పాంచ్ ఛే సాత్. తో హమ్ తీన్ విషయం కో విషయం పర్ చర్చా కరనే కా ప్రయాస్ కరేంగే ఆజ్. తో పహలా విషయ హై కి హు ఇజ్ శ్రీమతి రాధారాణి, రాధారాణి వాస్తవ మే హై కౌన్. तात्विक या तत्व के दृष्टिकोण से हम जानते हैं कि श्रीमती राधा रानी कृष्ण की नित्य संगिनी हैं. तो एग्जैक्टली उनका रोल क्या है कृष्ण के साथ, और वो कितनी श्रीमती राधिका कृष्ण को प्रिय हैं, और उनको कैसे अप्रोच किया जाए, या उनका प्राकट्य आदि का थोड़ा चर्चा करेंगे. और दूसरा विषय है कि आज बहुत पवित्र दिन है. क्या है आज पवित्र दिन? राधा कुंड का आविर्भाव तिथि है. तो आज के तिथि को दो नाम है, राधा कुंडाष्टमी और दूसरा है बहुलाष्टमी. तो आज वो पवित्र तिथि है जिस दिन राधा कुंड जो श्रीमती राधिका से अभिन्न है, नॉन डिफरेंट फ्रॉम श्रीमती राधिका, राधिका से अभिन्न ऐसा राधा कुंड है. तो वो किस प्रकार से स्टोर हाउस है माधुर्य रस का, या स्टोर हाउस ऑफ मर्सी, उस पर हम चर्चा करेंगे. और उसको कैसे अप्रोच किया जाए, और वो कितना महत्वपूर्ण है पूरे ब्रज में. सबसे महत्वपूर्ण स्थान राधा कुंड है, तो क्यों है, क्यों इम्पोर्टेंट है श्री राधा कुंड? हाँ, ब्रज का रत्न कहा जाता है. हाँ, राधा कुंड को क्या कहा जाता है? ब्रज का रत्न है, मुकुट मणि. हाँ, कोई मुकुट है उसके ऊपर एक मणि शोभायमान होता है, तो उस मुकुट की भी शोभा बढ़ती है। उसी प्रकार से ब्रज या वृंदावन वास्तव में शोभायमान है क्योंकि वहाँ राधा कुंड है। तो उस राधा कुंड का प्राकट्य, चैतन्य महाप्रभु का भ्रमण आदि का थोड़ा चर्चा करेंगे। और तीसरा विषय है बरसाना। तो अभी अभी हम बरसाना से आए हैं सब भक्त लोग। तो बरसाना वास्तव में क्यों गौड़िया वैष्णव के लिए महत्वपूर्ण है, और बरसाना के जो लीला स्थलिया हैं या श्रीमती राधिका का बरसाना का जो वास्तव्य है, या वृषभानु महाराज को कैसे बरसाना को उन्होंने स्थापित किया, या बरसाना के अलग अलग जो गढ़ हैं वो क्यों हैं, उनमें क्या प्रमुख कार्यकलाप राधा कृष्ण प्रकट करते हैं, हाँ तो इसकी चर्चा हम करने का प्रयास करेंगे। तो आप सब थोड़ा अटेंटिव रहिए। और तो ये जो चर्चा है इसको समझने के लिए थोड़ा सा एक प्लेटफॉर्म की आवश्यकता है। तो कई चीज़ें समझ में आ सकती हैं और कई चीज़ें समझ में नहीं भी आ सकती हैं। तो लेकिन फिर भी कृष्ण कथा का महत्व क्या है, शुन्वताम सो कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन। श्रील प्रभुपाद अमेरिका गए तो वहाँ सब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जैसे प्रभुपाद जब लेक्चर देते थे हिंदी में तो उनके डिसाइपल्स को प्रभुपाद बिठा देते कि हाँ नहीं नहीं बैठो, बल्कि अमेरिकन्स को हिंदी समझ में नहीं आ रहा था। तो किसी ने पूछा क्या आवश्यकता है, क्यों बैठे रहे हम? तो श्रील प्रभुपाद ने कहा क्यों, क्योंकि ये जो शब्द ध्वनि है, आध्यात्मिक जो शब्द हैं, ये क्या करते हैं, हमें हमारे हृदय पर एक प्रभाव डालते हैं और जिससे हमारी शुद्धि हो जाती है। जैसे श्रील प्रभुपाद कहा करते थे, मेरे आध्यात्मिक गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जब लेक्चर देते थे तो कई चीज़ें मुझे समझ में भी नहीं आती थी, लेकिन फिर भी मैं क्या होता था, अटेंटिव बैठकर सुनता था। क्योंकि श्रवण ही एक माध्यम है जिसके द्वारा हम अध्यात्म को समझ सकते हैं, या फिर कृष्ण हमारे हृदय में प्रविष्ट हो सकते हैं। प्रविष्ट करण रंध्रे न, किसके द्वारा कृष्ण प्रवेश करते हैं हृदय में, कर्ण के द्वारा। तो इसलिए कानों का हमारे भक्तिमय जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, दो चीज़ों का, एक जिह्वा का और दूसरा कानों का। तो जिह्वा हमें हमेशा वाइब्रेट करते रहनी चाहिए, जैसे हम मोबाइल को वाइब्रेट मोड में छोड़ देते हैं वो कभी कभी वाइब्रेट करता है, लेकिन ये जिह्वा जो है हमेशा वाइब्रेट करती रहती है। और इसको यदि ये जिह्वा कृष्ण नाम, कृष्ण रूप, कृष्ण गुण, कृष्ण लीला के लिए वाइब्रेट नहीं करती, इसको शौनक ऋषि श्रीमद् भागवतम के सेकंड कैंटो में असती कहते हैं। एक होती है सती स्त्री जिसको पतिव्रता कहा जाता है, चेस्ट वुमन। दूसरी होती है असती, जो पतिव्रता नहीं है, जिसका मन टलमल है। तो उसी प्रकार से शौनक ऋषि श्रीमद् भागवतम के सेकंड अध्याय में कहते हैं कि ये जो जिह्वा है, ये जब कृष्ण के अलावा बाकी चीज़ों का गुणगान करती है तो ये वास्तव में चेष्ट नहीं है। जिह्वा क्या नहीं है, पतिव्रता नहीं है, सती नहीं है, वो क्या हो गई है, असती हो गई है, वो किसी और के गुणगान में लगी है। अरे कोई स्त्री अपने पति के अलावा किसी और पर पुरुष का गुणगान करती है तो वो वास्तव में सती नहीं है। पत्नी का ड्यूटी, पत्नी का एक कर्तव्य है, तो उसमें क्या कर्तव्य है कि वो पति का गुणगान करें, जिससे उसके प्रति जो सेवा और आसक्ति की भावना प्रगाढ़ हो सकती है। तो उसी प्रकार से हमारे जीवन में हमारे लिए हमारी ये जो जीवा है ये हमेशा वाइब्रेट करते रहें, क्योंकि जीव के द्वारा हम कृष्ण से कनेक्ट हो जाते हैं। है बहुत छोटी सी चीज़, कितनी छोटी है कि नहीं, लेकिन सारे इंद्रियों में भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं तार मध्य जीवा आते लोभमय सुदूरमति, ये जीवा हमारा विनाश का कारण हो सकती है। क्या हो सकती है, विनाश का कारण। जैसे जो नाव होती है, नाव के नीचे छोटा सा एक भाग होता है, जीभ की तरह ही होता है, वो दिशा ही करता है नाव का, छोटा सा पार्ट होता है अंडर वाटर, जो पूरे नाव को टर्न देता है, इतनी बड़े बड़े नाव को क्या करता है, टर्निंग कर देता है। तो ये जीवा वास्तव में इतना छोटा सा पार्ट है, हमारे जीवन को क्या कर सकती है, ये घुमा सकती है, कृष्ण से विमुख कर सकती है। इसलिए इसको इतना साधारण नहीं लेना चाहिए। हाँ, इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो अपने जीवा का इस्तेमाल अपनी बुद्धि के साथ करते हैं, बहुत गंभीरता से जीवा का इस्तेमाल करते हैं। और जीवा का इस्तेमाल किस चीज के लिए करना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद को किसी ने प्रश्न पूछा, ओ प्रभुपाद आप बताओ कि लाइफ को परफेक्ट कैसे, परफेक्शन अचीव कैसे किया जा सकता है, या कैसे परफेक्ट किया जा सकता है जीवन, या कैसे सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। प्रभुपाद ने कहा केवल दो कार्य करने से। प्रभुपाद ने कहा आपके जो जीवा है हाँ, उसको कृष्ण प्रसाद के अलावा दूसरे किसी वस्तु का, किसी चीज का स्वाद चखना अलाउ मत करो। क्या है, केवल कृष्ण प्रसाद के अलावा मेरे जीवा में, मेरे मुंह के अंदर दूसरी चीज जानी नहीं चाहिए। ये चीज में आप फिक्स हो जाते हो तो आपको इंद्रियों को वश करना बहुत सरल हो जाता है, ऑटोमेटिकली इंद्रिया कंट्रोल हो जाती, परेशानी नहीं होना होता हमें। तो ये प्रभुपाद ने कहा जीवा का उपयोग कृष्ण प्रसाद के लिए करो, और दूसरा क्या करो, इस जीवा को वाइब्रेट करो हमेशा। कैसे, भगवान का नाम, भगवान के रूप, भगवान के गुण, भगवान की लीला, भगवान का धाम आदि की चर्चा करने में इसको लगाओ, क्योंकि भगवत कथा, भगवत नाम, भगवत रूप आदि की जो चर्चा है इतनी अतुलनीय है, इतनी आस्वादनीय है कि शौनक ऋषि कहते हैं स्वादु स्वादु पदे पदे, कि हम और अधिक आनंद बढ़ता ही जा रहा है। इसलिए श्रील प्रभुपाद कहा करते थे अपने डिसाइपल्स को, मुझे आप कभी चुप मत बिठाओ, क्या है, मुझे हमेशा बोलते रहने दो। मींस हमेशा रोज प्रोग्राम होने चाहिए, रोज में कृष्ण कथा। इसलिए प्रभुपाद चाहे जहां मर्जी हो, मॉर्निंग वॉक कर रहे हो, रात हो या दिन हो, लोगों से रूम कन्वर्सेशन कर रहे हैं, टेलीविजन में प्रोग्राम हो रहे हैं, मॉर्निंग वॉक में डिस्कशन हो रहा है कृष्ण कथा का, इवनिंग में वो श्रीमद् भागवत आदि को ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो ये सब क्या है, कृष्ण कथा वो हमेशा कंटिन्यू रख रहे हैं। इसलिए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के जीवन में भी एक बार उनका कुछ ऑपरेशन होने वाला था, और डॉक्टर ने कहा था कि आपको एक महीना कुछ बोलना नहीं है, आपको ये लेक्चर्स कृष्ण कथा आदि बंद करनी पड़ेगी। भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा मैं अपना शरीर त्यागने के लिए तैयार हो जाऊंगा, लेकिन मैं ये ऑपरेशन नहीं करूंगा, क्योंकि क्या हो जाएगा, कृष्ण कथा, कृष्ण का जो गुणगान है वो बंद नहीं होना चाहिए मेरी जीवा से। तो इसलिए परफेक्शन या हमारे जीवन का जो मोड है वो बदल सकता है, या परफेक्शन प्राप्त कर सकते हैं जब हम अपने जीवा का सही इस्तेमाल करें। क्योंकि जैसे हमने पिछले कई दिनों से जब चर्चा कर रहे थे गुरु और शिष्य आदि की, तो उसमें हमने सुना था कि किस प्रकार से ये शरीर एक नाव के समान है, और ये नाव को टर्निंग पॉइंट मिल सकता है, ये मोड़ ले सकती है यदि हमने अपने जीवा का सही रूप से इस्तेमाल नहीं किया। हाँ, क्योंकि ये जीवा, जीवाग्रह वसते लक्ष्मी, शास्त्र कहते हैं जीवा के आगे कौन निवास करती है, लक्ष्मी निवास करते हैं। तो जीवा का, इस जीवा के ऊपर आपके रिलेशन, आपके संबंध आदि ये हैं, स्थित हैं। ये क्षुरश धारा, ये तेज धार के समान है, ये काट सकती है और ये जोड़ भी सकती है, और रिलेशंस को बनाए भी रख सकती है। हाँ, तो इसलिए कृष्ण से भी हमें संबंध स्थापित करना है। हाँ, तो इस जीवा का इस्तेमाल हमें करना चाहिए, कृष्ण के नाम रूप आदि का वर्णन करना चाहिए, और जीवा वाइब्रेट होती रहेगी तो जीवा से जो वाइब्रेट वो किया हुआ जो साउंड है, ट्रांसेंडेंटल साउंड, वो कहाँ चला जाएगा, कानों में चला जाएगा। वास्तव में इस जगत में हम बंधे हुए हैं शब्द की ध्वनि के द्वारा, शब्द हमें आकृष्ट करता है कि नहीं करता, सुबह शाम आवाज हमें आकृष्ट करती है, जैसे हिरण है, हिरण का उदाहरण दिया जाता है, हिरण बहल या बांसुरी पर या जैसे मर्जी वो साउंड करता है, और वो हिरण जो है उसके साउंड के द्वारा आकृष्ट हो जाती है और वो उसको मार डालता है। या जो बड़े बड़े हाथी हैं उनको पकड़ा जाता है, कैसे पकड़ते हैं, हाथीनी की आवाज टेप रिकॉर्डर में चलाई जाती है और बड़े गड्ढा बनाया जाता है, उसको ढका जाता है। बेचारा हाथी उस साउंड की चित्कार उस हाथीनी की आवाज से उसके संग की अभिलाषा से दौड़ता है उस आवाज की तरफ और जाकर गड्ढे में गिरता है और उसको पकड़ा जाता है और गुलाम हो जाता है। तो उसी प्रकार से इस शब्द ध्वनि के द्वारा इस संसार में हम बंधे जा रहे हैं और ये शब्द ध्वनि इस वातावरण को पोल्यूटेड करते जा रहा है। जो शब्द ध्वनि कृष्ण से संबंध नहीं रखती, भगवत गुणगान नहीं करती, वो शब्द ध्वनि वास्तव में सारे जीवों को बंधन का कारण है, ठीक है नहीं? हाँ, चाहे वो फिर हमारे फैमिली मेंबर्स का टॉक हो या फिर टेलीविजन हो, चाहे न्यूज़ हो या न्यूज़पेपर भी, वो साउंड है। टेक्स्ट भी क्या है जो हम रीड करते हैं, वो भी एक साउंड है एक प्रकार का। तो इस प्रकार से ये जो ध्वनि है वो हमें बांधती है, इसलिए शास्त्र वर्णन करते हैं अनावृत्ति शब्द। अनावृत्ति मीन्स रिपीट करते रहो। क्या रिपीट करो? शब्द को, और शब्द का ही सहारा लेकर आप इस जगत से मुक्त हो सकते हो। जैसे गाँव में आपको कांटा घुस जाता है आपके पाँव में, तो वहाँ तो इमरजेंसी कुछ नहीं होगा, हाँ, तो कांटा घुसा तो दूसरा कांटा पेड़ से निकालते, उसी से कांटे से कांटा निकालते। तो ये शब्द ध्वनि हमें बांधती है, ये संसार में आकृष्ट करती है, हाँ। तो इससे मुक्त होने के लिए शास्त्र कहते हैं अनावृत्ति शब्दात, ये जो ट्रांसेंडेंटल साउंड वाइब्रेशन है कृष्ण नाम कृष्ण कथा, उसको रिपीट करते रहो। इससे क्या हो जाएगा, आप स्थित हो जाओगे। किसमें स्थित हो जाओगे? भगवत चेतना में स्थित हो जाओगे। इसलिए ये महत्वपूर्ण है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इतना वाइब्रेट करते रहना चाहिए, क्योंकि हम सोए हुए जीव हैं। अपने आप को हमें अहंकार होगा कि नहीं नहीं कौन कह रहा है मैं सो रहा हूँ। कभी कभी होता है लेक्चर में भी, हाँ, थोड़े से आँख झपकी लगती है, जपने तो भक्त लोग हमें उठाते, थोड़ा सा ही होता है, अरे मुझे क्यों आप तंग कर रहे हो, मैं सो नहीं रहा, मैं अटेंटिव, मोस्ट अटेंटिव पर्सन, हाँ, मुझसे कोई अटेंटिव नहीं है लेक्चर सुनने में या जप करने में। तो हम वास्तव में सो रहे हैं। कैसे सो रहे हैं? भगवत चेतना से विहीन है हम, उसको सोना कहा गया है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा, जीव जागो गोरा चांद बोले। हे जीव, जग जाओ, जीव जगो जगो। चैतन्य महाप्रभु हमें जगाने आए हैं। जगना का मतलब, और जगा कैसे जगा रहे हैं चैतन्य महाप्रभु? उदिलो आरुणा पूरब भागे, हाँ, द्विज मनी गोरा आमानी जागे। चैतन्य महाप्रभु सुबह सुबह निकलते थे अपने भक्तों के संग में नवदीप में, और सारे भक्त भकत समूह लैया साते गेला नगर ब्राजे, ताथई बाजे लखोल घन घन ताए झांजेर रोल। और भक्तों को लेकर, एक बड़े समूह को लेकर चैतन्य महाप्रभु निकलते थे हरिनाम संकीर्तन के लिए, और क्या गाते थे? मुकुंद माधव यादव हरि बोले न बोलो रे वदन भरी। वो कहाँ करते थे, अरे अरे हे जीवो जागो जागो, क्यों माया के गोद में आप सो रहे हो, उठो और इन नामों का उच्चारण करो। कौन से नामों का उच्चारण करो? मुकुंद माधव यादव हरि बोले न बोलो रे वदन भरी। ऐसे नहीं कंजूस की तरह बोलने के लिए नहीं कहा जाए, जैसे हम उच्चारण करने के लिए भी कहा जाता है तो उसमें भी इतना कंजूसी रखते हैं, लगता है कि उस साउंड को किसी और जगह यूज करना है, डिस्चार्ज हो जाएगा। नहीं, फुल फ्लेज हमें क्या करना चाहिए, लाउडली हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वास्तव में ये जीवा, ये बोलने की जो वाक शक्ति है, यह हमें दी है केवल भगवत नाम आदि का उच्चारण करने के लिए। लोचन दास ठाकुर कहते हैं कि यदि ये जो जीवा है अभी बोल सकती है, उच्चारण कर सकती है, उसका हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, अभी चुप्पी लगा के बैठे रहेंगे भगवान। बाकी सब चीजें करने के लिए बड़ा उत्साह है, बोलने के लिए बहुत उत्साह है। जब भगवत चर्चा की बात आती है, भगवान नाम जप आदि की बात आती है, तो चुप्पी क्या हो जाता है, ये मुंह बंद हो जाता है। तो ऐसे नहीं, क्योंकि ये जीवा अभी यदि भगवत नाम का उच्चारण नहीं करेगी तो लोचनदास ठाकुर कहते, क्योंकि इस जीवा के मुंह में तो आग लगाने वाले हैं, आगुन। हाँ, मतलब जब आप शरीर त्यागोगे तो अपना जो बेटा है वो लगाता है कि नहीं, शरीर को आग लगाता है, घुमा घुमा के कहाँ लगाते हैं, मुंह में डाल देता है। हाँ, क्यों? क्योंकि आपने भगवत नाम का उच्चारण नहीं किया, वो जलने वाली है, तो क्यों नहीं उसका प्रॉपर यूज हम करें। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मुकुंद माधव यादव हरि, बोले न बोलो रे वदन भरी। अरे अरे मेरे मित्रों, ये लोगो, उठो उठो और मुकुंद माधव यादव हरि गोविंद मधुसूदन आदि नामों का उच्चारण करो। हाँ, वदन भरी मतलब कंजूसी मत रखो, भरो भरो भर भर के बोलो, जोर जोर से बोलो। हाँ, क्योंकि जोर जोर से बोलोगे, क्योंकि हमारी चेतना, हम सोए हुए हैं, भगवत चेतना हमारी ढकी हुई है। हाँ, तो ये भगवत नाम जो दिव्य भगवत ध्वनि है, ये कानों से जाएगा और हम क्या होंगे, जग जाएंगे धीरे धीरे। जितना अधिक हम इस चीज का आश्रय लेते हैं, कौन सी चीज का, श्रवणम कीर्तनम मुख्य पथे पाय कृष्ण पदे प्रेम धन। हाँ, ये दो मुख्य पथ है, मेन रोड है कृष्णा कॉन्शियसनेस का। इसको कोई व्यक्ति पकड़ता है तो निश्चित रूप से उसकी चेतना में कृष्ण आ जाते हैं। कौन सी मुख्य चीज है, श्रवणम कीर्तनम। श्रवण कीर्तन जले करय सेचन, रूप गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि आप श्रवण कीर्तन के द्वारा सिंचन करो। और वास्तव में इसलिए हमें ये आयु मिली है, लंबी आयु किस लिए मिली है, केवल भगवान के बारे में श्रवण करने के लिए। आयु हरंती वै पुंसा उद्यान अस्तंच यन असो, असो मीन सूर्य। तो ये जो आयु है, ये सूर्य हमारी आयु को हर लेता है। हाँ, उदित होता है या अस्त होता है, वो हमारी आयु को हरण करता है। लेकिन जो लोग कृष्ण कथा में प्रवृत्त होते हैं, भगवत कथा को श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, उनकी आयु कम नहीं होती, उनकी आयु क्या होती है, बढ़ जाती है। हाँ, क्योंकि इस जीवन में भी वो भगवत गुणगानी कर रहे हैं और शरीर को छोड़ते ही उनको क्या करना है, भगवान का गुणगानी करना है। हाँ, तो इसलिए शास्त्र कहते हैं कि उनकी आयु वास्तव में बढ़ रही है। और यही इसी वर की अभिलाषा करनी चाहिए, इसी बुन की अभिलाषा करनी चाहिए। हमें ये अभिलाषा नहीं रखनी चाहिए, धनम देही जन्म देही सुंदर भारिया सुंदर रूपवती भारिया देही। व्यक्ति को ये अभिलाषा नहीं करनी चाहिए कि मुझे धनम चाहिए, जन्म चाहिए, जन्म मीन्स रिस्पेक्ट फॉलोवर्स, बॉस बनना है, जन्म देही धनम देही रूपवती सुंदर रूपवती भारिया सुंदर पत्नी सुंदर पति आदि, इसकी कामना नहीं करनी चाहिए। हाँ, जिस प्रकार से रामायण भगवान राम सीता देवी को लेकर आए अयोध्या में, तो उस समय सारे उनके बंदर आदि सब आ गए अयोध्या में। अब ये सारे बंदरों ने शहर नहीं देखा था, उनको बड़ा अच्छा लगा। हाँ, सारे बंदर कूद फांद मचा रहे थे, कूद रहे थे यहाँ वहाँ से। और अयोध्या तो अप्रतिम थी, अयोध्या की तुलना किसी और सिटी से नहीं की जा सकती। तो भगवान राम ने कहा था कि इनको आप फिस्ट खिलाओ, हनुमान जी को कहा था। तो ये बेचारों को क्या फिस्ट खिलाएंगे। तो एक बार उसी समय सीता देवी हनुमान जी के पास आती है और देखते कि वो हनुमान, क्योंकि उस समय हर एक को उसके सेवा के अनुसार गिफ्ट दिया जा रहा था। जैसे हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं या कुछ और कार्य करते थे, उसके बाद आपको सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, ट्रॉफीज मिलती है, कुछ ना कुछ मिलता है कि नहीं सेवा का। तो हनुमान जी को भी सीता देवी कह रही थी आप मांगो मांगो, तो उन्होंने कहा कुछ आवश्यकता नहीं। इन्होंने आशीर्वाद दिया सीता देवी ने कि आपको ये बुन देती हूँ कि आप क्या हो, लंबी आयु तुम्हें प्राप्त हो। उन्होंने बहुत टेंशन में आ गए। कौन? हनुमान। कहते लंबी आयु को क्या लाभ यदि भगवान राम का गुणगान श्रवण करने का मुझे मौका ही नहीं मिले, तो ऐसी लंबी आयु नहीं चाहिए। हम जो सप्त चिरंजीवी हैं उनमें से एक हनुमान है। तो उन्होंने कहा मुझे ऐसी आयु का कोई लाभ नहीं है, मुझे यही आप आशीर्वाद दो कि मैं नित्य रूप से भगवान राम के गुणों का गान कर सकूं और भगवान राम के गुणों का श्रवण कर सकूं, बस जब तक मेरे पास आयु है। हाँ, तो एक भक्त की यही अभिलाषा है। हाँ, जैसे राजा पृथु भगवान से यही प्रार्थना करता है कि हे कृष्ण, आपकी ये जो गुण कथा आदि है इतने अप्रतिम है, इतने आस्वादनीय है कि मैं जब इसको सुनता हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे हजारों हजारों कान चाहिए आपके इस कथा को सुनने के लिए। इस प्रकार से राजा पृथु की ये वांछा है, ये इच्छा है, और उसी प्रकार की इच्छा श्रील रूप गोस्वामी भी वृंदावन में प्रकट करते हैं। रूप गोस्वामी कहते हैं कि हे कृष्ण, कृष्णेति वर्ण द्वयम्। कृष्णेति वर्ण, वर्ण कृष्ण शब्द में दो वर्ण है, कृष्ण और न। कहते हैं रूप गोस्वामी कि हे कृष्ण, आपका ये जो नाम है ये इतना मधुर है कि जब मैं इसका उच्चारण करता हूं अपने जीवा से तो मुझे लगता है कि मेरे पास एक ही जीवा क्यों। क्या कहते हैं रूप गोस्वामी? मेरे पास एक ही जीभ क्यों? अभी हमारे पास एक ही जीभ है, उससे इतना परेशान है। वह हमेशा टेस्टी फूड चाहती है, वह हमेशा बातें बनाना चाहती है, इधर उधर की चर्चा, फिर भी वह संतुष्ट नहीं है। हाँ, जितना मर्जी भौतिक चीजों में लगाओ, तो एक जीभ के लिए हम इतने त्रस्त हैं, परेशान हैं। और वास्तव में लोग जीभ के लिए भाग रहे हैं। किसके लिए भाग रहे हैं? वो पेट को दोष दे रहे हैं, वो कह रहे पापी पेट का सवाल है, काम करना पड़ता है। बेचारा पेट का कोई सवाल नहीं है। हाँ, कौन भगा रहा है? जीभ। हाँ, कहाँ कहाँ भाग रहे लोग, कहाँ कहाँ के पकोड़े खाने के लिए चांदनी चौक। हाँ, मतलब पेट नहीं भगा रहा है, कौन भगा रहा है? जीवा भगा रहा है। हाँ, तो पेट को तो टेस्ट का पता ही नहीं चलता, उसको जो मर्जी डालो भर गया संतुष्ट, लेकिन फिर भी ये जीभ हमें क्या करती है? और कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, बस। हाँ, जीभ 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 हमें हाँ परेशान कर रही है। तो लेकिन यहाँ रूप गोस्वामी एक जीभ की कामना नहीं कर रहे हैं। रूप गोस्वामी कहते हैं कि कृष्णेति वर्ण द्वयम्, ये दो जो ये कृष्ण नाम है ये इतना मधुर है कि हे कृष्णा, मुझे हजारों हजारों जीवा चाहिए। कितने जीवा चाहिए? एक दो तीन चार नहीं, हजारों हजारों जीवा चाहिए, क्योंकि इसका कृष्ण नाम को वाइब्रेट, कृष्ण नाम का उच्चारण करना ही इतना मिठास है, मधुर है, इतना अधिक स्वीट है कि मुझे लगता है कि क्यों और क्यों नहीं मैं इसका उच्चारण करूं। ये बहुत उन्नत स्थिति है। हाँ, अभी तो हमें पीलिया रोग हो गया है, जॉन्डिस हो गई है, हमारे मुंह में कृष्ण नाम डालो या कृष्ण प्रसाद डालो फिर भी हमें कोई मिठास नहीं है, फिर भी हमारे जीवा अप्रसाद खाने के लिए भागते, नॉन प्रसाद चीजें, हमारी जीवा नॉन कृष्ण नाम, जो कृष्ण नाम के अलावा नाम सॉन्ग आदि उच्चारण करना चाहती है, ये हमारी दयनीय स्थिति है। तत्रापि न अनुराग, चैतन्य महाप्रभु ने कहा ये मेरी स्थिति है कि ये भगवान नाम ये कृष्ण आपने दिया है, इसमें आपने सारी शक्तियां डाली है और कोई नियम और काल समय आदि का ये नहीं है, फिर भी मैं इतना दुर्भाग्यशाली हूँ कि इस भगवान नाम के प्रति मेरा कोई अनुराग नहीं है, कोई रुचि नहीं है। लेकिन रूप गोस्वामी का उन्नत धरातल है। हाँ, जो जॉन्डिस हो जाता है, उपदेशामृत में रूप गोस्वामी कहते हैं किसी को पीलिया की बीमारी हो जाती है तो उसको कोई भी मीठी वस्तुएं खाने के लिए दो तो मीठे नहीं लगते, कैसे लगती है उसको? कड़वी लगती है। इसलिए हमें कोई रुचि नहीं है भगवान नाम आदि सुनने के लिए। भगवान नाम क्यों नहीं हमसे जप होता? क्योंकि इंद्रिय तर्पण रूपी पीलिया हो गया है, उसमें हम आ सकते हैं, उसी में आनंद आ रहा है, उसमें रस हमें प्राप्त हो रहा है। हाँ, वो ब्लॉक कर रहा है कृष्ण नाम लेने के लिए, तो हमें कोई रुचि नहीं है। हाँ, लेकिन इसकी दवाई भी एक ही है, पीलिया या जॉन्डिस को खत्म करने की। स्वीट आपको शुगर कड़वी लगे तो भी खाते रहो, अरे शुगर ही क्या करेगी? बीमारी को दूर करेगी और मिठास आएगी। तो उसी प्रकार से भक्तों का संग हमें अच्छा लगा या ना लगे, भगवान के बारे में सुनना अच्छा लगे या ना लगे, भगवान नाम लेने की इच्छा हो या ना हो, तभी भी हमें क्या करना चाहिए, नाम लेना चाहिए, कृष्ण कथा सुननी चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए और सर्विसेस में लगाना चाहिए। हाँ, क्योंकि मन तो हमेशा बहाने बनाएगा, उसके जैसा बहाने मारने वाला कोई नहीं है, है कि नहीं, सबको अनुभव है। तो इस प्रकार से रूप गोस्वामी ने कहा कि मुझे हजारों जीवा दे दो ताकि आपके नाम में इतनी अधिक मिठास है कि मैं जिसको पान कर सकूं। हाँ, जैसे श्रीमती राधिका भी कहते हैं, हे सखी श्याम नामे कतो मधु आछे गो, एक सखी ललिता आदि को कहती है श्रीमती राधिका कि हे सखी, ये जो श्याम नाम किसमें कितनी मधु है, मधु मीन्स क्या, हनी, शहद, शहद कितना स्वीट है। हाँ, सारे फूलों का मकरंद, अलग अलग फूलों का चूज करके हाँ शहद प्राप्त होता है। हाँ, कितना स्वीटनेस है उसमें कि इतना अधिक मधुर है। वदना छाड़ी तेना पारे, श्रीमती राधिका कहती है कि ये जो कान में जब चला जाता है या जीवा पर आ जाता है ये श्याम नाम, मेरा जो वदन है, मेरा जो जीवा है, मेरा मुंह है, इसको छोड़ना नहीं चाहता। और हम माला हाथ में लेते, लेने से पहले सोचते कि कब इसको छोड़ना है कि नहीं, जब शुरू करने से पहले ये थॉट्स आ जाते हैं कि जब कब खत्म होगा या कब खत्म होना हो करना है मुझे। तो यह वो उन्नत धरातल है और हम बने हैं भगवत भक्ति में उन्नत होने के लिए और उसी की हमें आकांक्षा रखनी चाहिए। हाँ, जैसे भौतिक संसार में हम 6 ऐश्वर्य में आगे बढ़ना चाहते, भगवान से कंपटीशन करना चाहते, बलशाली होना चाहते, ऐश्वर्यवान होना चाहते, सुंदर होना चाहते, अधिक से अधिक धनवान होना चाहते, वैराग्य दिखाना चाहते, अपने नॉलेज को जगत के सामने स्थापित करना चाहते। तो उसी प्रकार से हमें ये लालसा रखनी चाहिए कि भगवत भक्ति में मुझे उन्नत होना है, आगे बढ़ना है। और जब सिंसियर डिजायर कृष्ण हमारे देखते हैं तो कृष्ण एनवायरनमेंट हमें प्रदान करते हैं, कृष्ण हमें हेल्प करते हैं। कृष्ण किसी जीव को देखते हैं कि वो जीव के अंदर सिंसियर डिजायर है मेरी ओर आने के लिए, मेरी सेवा करने के लिए, मेरे सेवा आदि में प्रवृत्त होने के लिए। तो कृष्ण इस प्रकार की व्यवस्था करते हैं कि वो व्यक्ति, वो भक्त भगवत के चरणों में इजिली, सरलता से अग्रसर हो सके। जैसे ध्रुव महाराज ने जब अपने सौतेली माँ ने उनको भगाया कि जाओ उत्तानपाद के गोद में बैठने का आपको अधिकार नहीं है, जब तक आप मेरे गर्भ से जन्म ना लो, तो अपनी माँ के पास जाते हैं और उनकी माँ कहती है कि भगवान ये चीज़ तो, इनसे बड़ा राज्य तो भगवान ही दे सकते हैं और भगवान तो जंगल में है। तो ध्रुव महाराज जंगल में जाते हैं और कृष्ण देखते कि ओ एक 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 एक, एक छोटा सा जीव हाँ मेरी ओर आना चाहता है। तो कृष्ण उनके लिए अरेंजमेंट करते, किसको भेजते हैं, नारद को भेजते हैं। तो इस प्रकार से हमें ये इच्छा रखनी होगी। तो इस प्रकार से रूप गोस्वामी ने कहा कि हे कृष्ण, आपका नाम बहुत मधुर है, मुझे हजारों जीवा चाहिए ताकि मैं उसका उच्चारण कर सकूं। और हजारों जीवा जब इस नाम का उच्चारण करेगी तो मुझे सुनने के लिए कितने कान चाहिए, हजारों नहीं, अभी एक जीवा है तो 2 कान है, तो हजारों जीवा है तो कितने कान होंगे, डबल होंगे ना, करोड़ों करोड़ों, उन्होंने बोला करोड़ों करोड़ों कान चाहिए। क्योंकि ये कृष्ण नाम इतना अमृतमय है कि इसको मैं और अधिक सुनना चाहता हूँ, और अधिक पीना चाहता हूँ, भर भर के पीना चाहता हूँ। तो इस प्रकार से ये अभिलाषा एक उन्नत भक्त की है। ये उन्नत भक्त का लक्षण है कि वो कृष्ण कथा से, भगवत नाम आदि, भगवत चर्चा से अलिप्त नहीं रह सकता। उसका मन, उसका हृदय कहाँ भागेगा, भगवान की कथा, भगवान का नाम, भगवान के गुण, भगवान के रूप, लीला धाम आदि की ओर भागेगा। जिस प्रकार से गंगा रुकती नहीं है, कहाँ भागती है, वो सागर की तरफ। इसलिए कुंती महारानी भी भगवान से यही प्रार्थना करती है कि हे कृष्णा, मेरा मन क्या, मेरा मन अब मेरे दोनों परिवारों में लगा हुआ है, माता के और पति के। तो आप सुव्यवस्था करो कि मेरा आसक्ति, मेरा जो लगाव है, मेरा प्रेम इन दोनों परिवारों में ना रहे। ये सारे परिवार तो दुखदायी है ना। पारिवारिक व्यवस्था कोई उचित थोड़ी है, उनमें मन लगा के रखना। उन्होंने कहा कि हे कृष्ण, जब कृष्ण द्वारका के लिए निकल रहे थे महाभारत के युद्ध के बाद, हस्तिनापुर से वो आके उनके रथ को रोकती है और इस प्रकार की प्रार्थना करती है कि हे कृष्ण, आप ऐसी व्यवस्था करो कि मेरा जो मन है आपके चरणों की ओर उस प्रकार से बढ़े या बहता जाए जिस प्रकार से गंगा सागर की ओर बढ़ती है। हाँ, तो उसी प्रकार से ये हमारा मन है वो कृष्ण में लगना चाहिए, या जो उन्नत भक्त है वो भगवत कथा आदि से वो अलिप्त नहीं हो सकता, अलग नहीं रह सकता। हाँ, जिस प्रकार से ये रूप गोस्वामी एक चीज की चर्चा करते हैं, तो कहने का तात्पर्य है कि बहुत जल्दी हम अपने आप को शुद्ध कर सकते हैं और उन्नत धरातल पर स्थापित कर सकते हैं जब हम कृष्ण नाम, कृष्ण कथा का गंभीरता से आश्रय लेते हैं। हाँ, शुन्वता स्व कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन रुदंतस्तो ही अभद्राणी विधुनुति सुरुत सताम। विधुनुति सुरुत जो भगवान है वो एक सुरुत के भांति है, मित्र के भांति है। हाँ, कोई व्यक्ति कृष्ण कथा को, कृष्ण नाम को सुनता है तो कृष्ण स्वयं श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि उस व्यक्ति के हृदय में चले जाते हैं, और हृदय में जाकर क्या करते हैं, सबसे पहले चेतो दर्पण मार्जनम, कृष्णा ये बनते हैं, झाड़ू वाला बनते हैं, है कि नहीं। इतना उनको अफेक्शन है एक जीव के प्रति जो आ रहा है उनकी ओर, कृष्ण अपने आप को देने के लिए बैठे हुए हैं लेकिन हम कृष्ण को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, हम मंद बुद्धि के हैं, दुर्बुद्धि के हैं। हाँ, तो ऐसे कृष्ण कहते हैं कि जैसे ही कोई जीव मेरे बारे में श्रवण आदि कीर्तन में लगता है, सुनमता सुकथा कृष्ण पुण्य श्रवण, क्योंकि मेरे बारे में सुनना ही हजारों हजारों तीर्थों में भ्रमण करने से भी बढ़कर है, क्योंकि सारे तीर्थ वहां निवास करते हैं जहां कृष्ण का गुणगान होता है। क्योंकि तीर्थ अपने अब में क्यों तीर्थ पवित्र करने वाले हैं, क्योंकि वह कृष्ण है या उनके डिवोटीज है। हाँ, इसलिए कृष्ण कथा सारे लोगों को पवित्र करने वाली है, वो गंगा के समान है। गंगा स्वर्ग में होती है तो मंदाकिनी कहते हैं उसको, तो वहाँ पवित्र करती है। वही गंगा पृथ्वी में आती है तो गंगा कहते हैं उसको, या जाह्नवी कहते हैं, वो पवित्र करती है इस वातावरण को, पृथ्वी को। और वही गंगा जब पाताल में जाती है तो उसको भोगवती कहा जाता है। हाँ, तो जिस प्रकार से गंगा तीनों लोगों को पवित्र करने का सामर्थ्य रखती है, उसी प्रकार से भगवत चर्चा, भगवान नाम आदि तीनों प्रकार के लोगों को पवित्र करने का सामर्थ्य रखता है। एक है जो श्रोता है, कौन है, सोता नहीं, श्रोता, जो सुनता है उसको पवित्र करता है भगवान नाम, भगवत कथा। और दूसरा जो वक्ता है, वक्ता नहीं कृष्ण के बारे में बोलता है, कई होते फिर भगवत गीता अपनी अपनी, तो कई वक्ता होते हैं जो वक्ते रहते हैं, कृष्ण की चर्चा कम, खुद की चर्चा ज्यादा। हाँ, तो इस प्रकार से नहीं तो प्यूरिफिकेशन नहीं होगा। तो कृष्ण कथा जो श्रवण करता है, हाँ, आदर के साथ उसको पवित्र करती है, और जो कीर्तन करता है, जो बोलता है, उसको पवित्र करने का सामर्थ्य रखती है। और जो जिज्ञासु है, जो प्रश्न पूछता है, उसको भी क्या करती है, कृष्ण कथा पवित्र करती है। तो इसलिए ये वंडरफुल अपॉर्चुनिटी श्रील प्रभुपाद ने दी है, या कृष्ण ने हमें प्रदान की है, उसका लाभ उठाना चाहिए। जब भी हमें मौका मिले तुरंत हमें दौड़ना चाहिए। किस चीज़ के लिए दौड़ना चाहिए, अपने जीवन में जीवन को परफेक्शन या सिद्धि प्राप्त करने के लिए, अपने जीवन को परफेक्ट बनाने के लिए। हाँ, जैसे परीक्षित महाराज ने, अंत समय में कोई चीज़ आपको साथ नहीं देगी, परीक्षित महाराज के पास कम समय था तो उन्होंने क्या किया, क्या किया, बस और कुछ नहीं, भक्तों के संग में आए और भगवान का जो गुणगान है हाँ वो गंभीरता से सुना और इतना उन्नत या वो इतना तुष्ट करने वाला है, तृप्ति करने वाला है, सेटिस्फेक्शन देने वाला है कि श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद के शुरुआत में परीक्षित महाराज की परीक्षा ले रहे थे शुकदेव गोस्वामी और शुकदेव वो परीक्षित शुकदेव गोस्वामी कहते हैं अभी तो बहुत समय हो गया, शायद चौथा दिन था दशम स्कंद शुरू हुआ चौथा। हाँ उन्होंने कहा अभी तो बहुत समय हो गया, उठो जरा जाओ, अभी लेक्चर थोड़ा बंद करता हूँ, आप क्या करो जाओ और थोड़ा सा घूम के आ जाओ, आपके हाथ पैर थोड़े दर्द हो रहे होंगे, हाँ अब प्यास लगी होंगी, थोड़े मोबाइल में SMS आए होंगे, उन्होंने वाइब्रेट में रखा है हाँ बहुत सारी चीज़ें हैं तो जाओ जाओ। उन्होंने कहा नहीं, और अब बहुत दिनों से आपने प्रसाद भी नहीं लिया, बल्कि शुकदेव परीक्षित महाराज आमरण उपशन वो बिना कुछ खाए पिए केवल एक ही चीज को पी रहे थे, कृष्ण रसायन पीबा, क्या पी रहे थे कृष्ण रसायन। ये रसायन बनाई चार चीजों से है, नाम रूप गुण लीला और धाम, पांचवी चीज ये कृष्ण रसायन पीते ही जा रहे थे। उन्होंने कहा कि आप मुझे अभी जो तक्षक सब आकर डसने वाला है उसका भी भय नहीं है, और मुझे ये जो भूख प्यास आदि है ये भी मुझे बाधा नहीं दे रही है, हाँ क्योंकि मैं कृष्ण का गुणगान सुनते जा रहा हूँ, आप बोलते जाओ। तो इस प्रकार से शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कह रहे थे। तो परीक्षित महाराज के जीवन से देखते हैं कि वास्तव में जिस संतुष्टि की हम अभिलाषा कर रहे हैं अपने जीवन में, वो संतुष्टि तभी संभव है जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है उनमें हमारे मन हृदय और इंद्रियों को लगाए। ऋषि के न ऋषि केशा सेवनम भक्ति रुचित, भक्ति यही है कि हम अपने इंद्रियों को भगवत सेवा में लगाए, भगवान की संतुष्टि में लगाए, भगवान को तुष्ट करने में लगाए, और भगवत तुष्टि में ही हमारी तुष्टि है। यस्मिन तुष्टे जगत तुष्ट, हमें अलग अलग किसी को सेटिस्फाई करने की आवश्यकता नहीं है, और अपने सेटिस्फेक्शन के लिए किसी और का आश्रय लेने की आवश्यकता नहीं है। हाँ कृष्ण को हम तुष्ट करने का प्रयास करेंगे, कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयास करेंगे तो स्वाभाविक रूप से हमारी भी तुष्टि हो जाएगी। जैसे द्रौपदी के पास अक्षय पात्र था, दुर्वासा मुनि के सारा फॉलोअर्स के साथ गए थे, 60,000 शिष्य दुर्योधन ने कहा भेजो उनको, लेकिन उन्होंने क्या द्रौपदी ने खा लिया था, उसके बाद किसी को खिला नहीं सकते थे, लेकिन कृष्ण आया और कृष्ण ने द्रौपदी से मांगा, क्या मांगा, कुछ बचा है क्या आपके घर में, मुझे दे दो। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ देखती हूँ मैं, अक्षय पात्र, उस पात्र में सूर्य से जो उनको अक्षय पात्र मिला था उसमें छोटा सा शाक का टुकड़ा था, उनका यही बचा है। तो कृष्ण उसको ग्रहण करते हैं, जैसे कृष्ण तुष्ट हो गए या 60,000 और एक उनके गुरु दुर्वासा मुनि सब तुष्ट हो गए, अपने पेट में हाथ घुमाने लगे तुष्ट। तो कहने का तात्पर्य क्या है, कृष्ण को तुष्ट करोगे हाँ तो जगत तुष्ट हो जाएगा, स्वयं भी तुष्ट अनुभव करोगे। और कृष्ण को तुष्ट करने का सरल उपाय है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, भगवान नाम का उच्चारण और भगवान का गुणगान। किसको अच्छा नहीं लगता अपना गुणगान, वो पर्सन है, कृष्ण पर्सन है, व्यक्ति है, जब उसका गुणगान करोगे और सुनोगे कृष्ण की तरह अच्छा इतने लोग सुन रहे हैं मेरा गुणगान हाँ, तो भगवान बहुत खुश हो जाते हैं और वो तुष्ट हो जाते हैं, और स्वाभाविक रूप से हम भी तुष्टि अनुभव करते हैं। जिस प्रकार से 6 गोस्वामी निद्रा आहार कादि विजितो ब्रज में रहे थे हाँ, तो वो संतुष्ट थे हाँ, तो इस प्रकार से हमें श्रवण करने का प्रयास करना चाहिए और अपनी जीभा को लगाना चाहिए अधिक से अधिक इन कार्यों में, जो मुख्य पथ चैतन्य महाप्रभु ने कहा मुख्य पथे पाय जीव कृष्ण प्रेम धन, ये मुख्य पथ है श्रवणम कीर्तनम। हरे कृष्णा, सबका प्रसाद का समय हो गया है, हरि बोल। किसी के एक दो प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। अन्यथा हम विराम देंगे।
प्रसाद का ब्रेक है, उसके बाद क्लास चलती है। कोई बात नहीं, जिन्होंने जाना होगा।
2 बज गए अभी तो ये ब्रेक है, आप सब थोड़ा अपने आप को ढीला कर सकते हैं, चल सकते हैं, खड़े हो सकते हैं। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं टॉपिक चेंज करने वाला हूँ, दूसरे विषय पर चर्चा करूँगा, तो उसके बाद फिर आप प्रसाद ले सकते हैं और जो रुकना है वो रुक सकते हैं, जिनको ऑफिस अटेंड करना है ऑफिस में जा सकते हैं। हाँ, मंदाकिनी गंगा या फिर जाह्नवी, जानो मुनि ने मायापुर में उनको पी लिया था, उनके जांग से निकली थी, उनकी पुत्री के रूप में जाह्नवी कहा जाता है, और भोगवती पाताल में। तो उसी प्रकार से कृष्ण कथा का तुलना किया गया है, कृष्ण कथा उतना ही सामर्थ्यवान है, शक्तिशाली है, इवन कृष्णा अपनी कथा को स्वयं सुनना चाहते हैं। कृष्ण लीला में भी हम कई लीलाएं पढ़ते हैं, या रामायण आदि में भी पढ़ते हैं, कृष्ण के आचरण से भी देखते हैं, या चैतन्य महाप्रभु के रूप में वो आते हैं तो भी हम देखते हैं। तो इसलिए कहने का तात्पर्य है, भगवत विज्ञान बहुत सरल हो जाता है उस व्यक्ति के लिए जिसने सबमिसिव एटीट्यूड से हियरिंग करना सीखा है, चैलेंजिंग एटीट्यूड से नहीं, जस्ट सबमिसिव सर्विस एटीट्यूड को अपने हृदय में धारण करते हुए वैष्णव और भगवान के प्रति आदर और सम्मान की भावना रखते हुए हम जब श्रवण करते हैं, कृष्ण बहुत अधिक प्रसन्न हो जाते हैं, और भगवत ज्ञान, भगवत तत्व हमें प्रकाशित होता है, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। तो ये प्रकाशित कैसे होगा, क्योंकि जैसे हमने गुरु के योग्यताओं की चर्चा की थी, तो गुरु का मतलब वही है, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, ये 2 क्वालिफिकेशन है गुरु के। सबसे पहला क्वालिफिकेशन योग्यता क्या है, श्रोत्रियम। श्रोत्रियम मीन्स गुरु ने अपनी परंपरा में ऑथेंटिक सोर्स, अपने आध्यात्मिक गुरु से क्या क्या होना चाहिए, उसने सुनना चाहिए, श्रोत्रियम। और जब वो सुनेगा भगवत चर्चा को, भगवत तत्व को, तो वो अगले धरातल में क्या होगा, स्थित हो जाएगा, उसको कहते हैं श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। ब्रह्मनिष्ठम का मतलब है ब्रह्म मीन्स परम ब्रह्म कृष्ण, उनकी सेवा में निष्ठा स्थित हो जाता है। हाँ, ऐसे गुरु कभी भगवत सेवा से विमुख नहीं हो सकता, 24 आवर्स वो कृष्ण सेवा में लगे रह जाते हैं, नाना प्रकार के कृष्ण सेवा। श्रील प्रभुपाद का जीवन हम देखते हैं, या हमारे गुरु महाराज श्रील गोपाल कृष्ण महाराज के जीवन से हमने पर्सनली देखा है। हाँ, तो उसको कहते हैं सर्विस में निष्ठा, भगवत सेवा में निष्ठा, कि इस संसार की कोई भी चीज, चाहे वो 3 प्रकार के ताप क्यों ना हो, आदि भौतिक, आध्यात्मिक या आदि दैविक, ये 3 प्रकार के कष्ट उनको भगवत सेवा से विचलित नहीं कर सकते। जैसे श्रील प्रभुपाद जब वो 1965 में अमेरिका गए, तो उनके ऊपर एक प्रकार से देखा जाए तो मतलब बेगर थे वो, है कि नहीं, बेगर ही थे, उनके पास कुछ नहीं था, फिर भी भगवत सेवा में बिल्कुल निष्ठावान थे। और इतना होता है कि नहीं, जल दूध जहाज से वो चले गए, उनको फ्री 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 किसने भेजा था, सुमति, उनकी मति कैसी थी उस माता जी की, अच्छी मति थी सही में। मैं वो माता जी के नाम के बारे में सोच रहा था कल परसों, सुमति मोरार जी, सुमति मतलब वास्तव में उसकी मति बहुत अच्छी थी, कि उसने एक वैष्णव को सहायता की और उसने फ्री भेजा, हाँ, उस मैसेंजर को जिसने पूरे वर्ल्ड में कृष्ण भावना को फैलाया। तो श्रील प्रभुपाद जब जहाज में भी जा रहे थे, तब फिर उनको 3 हार्ट अटैक आते हैं, लेकिन फिर भी ब्रह्म या कृष्ण की सेवा से कोई विचलित कर पाया उनको नहीं, क्योंकि वो श्रोत्रियम, उन्होंने अपने गुरु से भगवत चर्चा को अच्छी तरह से श्रवण या समझा था, बिल्कुल स्थित थे भगवत सेवा से, हटे नहीं वो। हमें थोड़ा कुछ होता ही नहीं होता है तो हम सब ब्रेक करना शुरू करते हैं, नो मोर कृष्ण भक्ति, नो मोर भगवत सेवा, बस बहुत हो गया, बहुत हो गया पेड़ के नीचे। नहीं तो ये हम ब्रह्मनिष्ठम नहीं है, स्थिर नहीं है। स्थिर होना होगा, और स्थित कैसे होगा, इन्हीं चीजों से होगा। और वही श्रील प्रभुपाद जब उतरते हैं बोस्टन के बंदर में या अमेरिका में जहां भी, तो वहां देखते कि वहां तो वातावरण ही पूरा मतलब कल्पना से परे था। भारत में तो आप जहाँ जाओ आपको लोग साधु के कपड़े पहने तो बैठने के लिए जगह देंगे, पानी दे देंगे, आपको उनसे मांगोगे तो कुछ ना कुछ आप भिक्षा देंगे, भोजन देंगे, हाँ लेकिन हेल्प करेंगे। लेकिन वहां तो देखा, यहाँ तो लोग सुनेंगे भी, एक दो लोग तो आपको सुनेंगे, हाँ लेकिन वहां तो बिल्कुल उल्टा था। पैशन रजो तमो गुना सबा अछन्न, उन्होंने अपने पोयम में लिखा कि यहाँ मैं आया हूँ तो यहाँ देखा कि सारे लोग रजोगुण और तमोगुण से बिल्कुल कवर्ड है, आछन्न है, हाँ रजो और तमोगुण के कार्यों में। तो इस प्रकार से अब फिर भी उन्होंने उन सेवा को नहीं छोड़ा, ब्रह्मनिष्ठम स्थित थे, फिर भी उन्होंने भगवान से प्रार्थना की और कहा कि मैं, आपने यहाँ मुझे लाया है इतने दूर, जरूर आपका कोई प्रयोजन होगा, जरूर कुछ मुझसे प्रयोजन होगा, इसलिए तो कृष्ण आप मुझे इतने दूर लाए हो, भारत से अमेरिका, बल्कि मेरे पास 40 ही रुपए थे, और फिर फुल्ली सरेंडर थे, हे कृष्ण आप मुझे यहाँ लाए हो, जैसा चाहे वैसे नचाओ, मैं आपका आपके हाथ की कठपुतली बन गया हूँ। ये है डिवोटी का मतलब, ही है कि वो कृष्ण के हाथ की क्या है, वो कठपुतली है, कृष्ण जैसा चाहे वैसे भक्त को नाचने के लिए तैयार होना चाहिए, या शिष्य गुरु जैसा शिष्य को नचवाना चाहिए उसको तैयार होना चाहिए, वो शरणागति का सर्वोत्कृष्ट स्तर है, भगवान के प्रति शरणागति का स्तर, जिसको आत्मनिवेदन कहा जाता है। मानस देह जो किचु मोर अर्पिलो तुवा पदे नंद किशोर, हे नंद किशोर आपके चरणों में मैंने मेरा मन शरीर जो भी चीजें हैं वो मैंने समर्पित की हैं। तो इस प्रकार से ये चीज है श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, तभी निष्ठा हो सकती है, तभी हम भगवत भक्ति में स्थिर हो सकते हैं, इसलिए हमें इस पर जोर देना चाहिए श्रवणम। और शास्त्र कहते हैं भगवत भक्ति के महल का पहला जो सीढ़ी है वो क्या है, श्रवणम, नवदा भक्ति का पहला अंग श्रवणम है। हरे कृष्णा, ठीक अभी।